नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। विलियम केंट की डेटा एंड रियलिटी तीसरा संस्करण डेटा मॉडलिंग पर लिखी गई असाधारण रूप से वैचारिक पुस्तक है। इसका विषय केवल डेटा बेस की तालिका है, फीड और संबंध नहीं है, बल्कि वह मानवीय प्रक्रिया है जिसमें हम अनिश्चित, बदलती और संदर्भ पर निर्भर दुनिया को निश्चित दिखने वाले डेटा में बदलते हैं। केंट का मूल तर्क है कि डेटा वास्तविकता की प्रतिलिपि नहीं, किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया गया उसका सीमित निरूपण है। पुस्तक भाषा, पहचान, वर्गीकरण, नामकरण, विशेषता और संबंध जैसे साधारण लगने वाले विचारों के भीतर छिपी अस्पष्टताओं की जांच करती है। मूल कृति 1978 में आई थी, जबकि तीसरे संस्करण में स्टीव होबरमैन ने अद्यतन उदाहरण और अध्ययन टिप्पणियां जोड़ी है। यह कोई तकनीकी उत्पाद का मार्गदर्शक नहीं है, ना ही यह तैयार मॉडलिंग नियमों की सूची देता है। इसका उद्देश्य पाठक को बेहतर प्रश्न पूछना सिखाना है, ताकि डेटा की संरचना बनाने से पहले उसके अर्थ, सीमा, दृष्टिकोण और उपयोग को स्पष्ट किया जा सके। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डेटा वास्तविकता नहीं, उद्देश्यपूर्ण प्रतिनिधित्व है। केंट की सबसे केंद्रीय स्थापना यह है कि डेटा को दुनिया का निष्पक्ष और पूर्ण चित्र मानना भ्रामक है। किसी संगठन का डेटाबेस वास्तविक जगत से सीधे तथ्य नहीं उठाता। पहले लोग तय करते हैं कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, उसे किस नाम से बुलाना है, किन भेदों को दर्ज करना है और किन भेदों को अनदेखा करना है। इसलिए डेटा मॉडल हमेशा चयन, सरलीकरण और व्याख्या का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, ग्राहक का रिकॉर्ड किसी व्यक्ति की पूरी सामाजिक, कानूनी और समय के साथ बदलती पहचान नहीं होता। वह केवल उस पहचान का वह अंश है जो किसी बिक्री, सेवा, जोखिम या अनुपालन प्रक्रिया के लिए उपयोगी समझा गया है। समस्या तब पैदा होती है जब मॉडल की सुविधा को वास्तविकता का गुण मान लिया जाता है। एक कॉलम में एक ही मान रखने की बाध्यता या हर वस्तु के लिए एक स्थिर पहचानकर्ता प्रणाली की जरूरत हो सकती है, दुनिया की नहीं। केंट इस अंतर को दार्शनिक सजावट के रूप में नहीं रखते। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि आवश्यकताएं जुटाने, डेटा साझा करने और प्रणालियों को जोड़ने में मॉडल की धारणाएं स्पष्ट लिखी जाए। यह पूछना जरूरी है कि डेटा किस निर्णय के लिए बनाया गया है, किस संदर्भ में सही है और किन परिस्थितियों में उसका अर्थ बदल सकता है। यही सावधानी झूठी सटीकता से बचाती है। दूसरा, एक चीज की पहचान, समानता और श्रेणियां स्वाभाविक रूप से अस्पष्ट है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विचार प्रश्न है, एक चीज क्या है? यह प्रश्न सरल वस्तुओं पर भी कठिन हो जाता है। कोई व्यक्ति समय के साथ रूप, पता, नाम और भूमिकाएं बदल सकता है, फिर भी हम उसे वही व्यक्ति कहते हैं। किसी सड़क का नाम बदल जाए, उसका मार्ग टूटे या अलग प्रशासनिक क्षेत्रों से गुजरे, तो क्या वह एक ही सड़क है? ऐसे प्रश्न बताते हैं कि एकता, समानता और श्रेणीकरण केवल तकनीकी निर्णय नहीं है, वे संदर्भ, उद्देश्य और मानवीय प्रचलन से बनते हैं। केंट के अनुसार, डेटा मॉडलर को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि हर इकाई की सीमा पहले से स्पष्ट है। उसे यह समझना चाहिए कि उपयोगकर्ता किस काम के लिए किसी वस्तु को एक मानता है, किन बदलावों के बाद उसे अलग मानता है और कौन से अपवाद स्वीकार्य है। अलग विभाग एक ही शब्द का अलग अर्थ ले सकते हैं। तेल उद्योग के उदाहरण में भूवैज्ञानिक और उत्पादन संबंधी उपयोग में वेल की सीमा अलग हो सकती है। दोनों परिभाषाएं अपने संदर्भ में उपयोगी हैं, पर उन्हें बिना स्पष्टता के जोड़ना गलत निष्कर्ष देगा। इसलिए एकीकरण का काम केवल फीड मिलाना नहीं है, उसमें अवधारणाओं की सीमाएं, पहचान के नियम और वर्गीकरण की धारणाएं मिलानी पड़ती है। पुस्तक इसी असुविधाजनक लेकिन अनिवार्य चर्चा को मॉडलिंग का केंद्र बनाती है। तीसरा, नाम, पहचानकर्ता और प्रतिनिधि वस्तु के समान नहीं होते। केंट नाम और पहचानकर्ता के बीच के अंतर को विस्तार से देखते हैं। नाम आमतौर पर संचार की सुविधा के लिए होते हैं, जबकि पहचानकर्ता किसी प्रणाली में भेद करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर भी व्यवहार में दोनों को अक्सर एक जैसा मान लिया जाता है। नाम बदल सकते हैं, एक जैसे नाम कई लोगों या वस्तुओं के हो सकते हैं और एक ही वस्तु के अलग संदर्भों में अलग नाम हो सकते हैं। दूसरी ओर, किसी रिकॉर्ड संख्या या कोड का स्थिर दिखना भी यह सिद्ध नहीं करता कि वह हर प्रणाली और हर समय उसी वास्तविक वस्तु का अचूक प्रतिनिधि है। पहचानकर्ता की विशिष्टता उसका दायरा तय होने पर ही अर्थपूर्ण होती है। वह किसी एक विभाग, समयावधि, देश या डेटाबेस में अद्वितीय हो सकता है, पर बाहर नहीं। पुस्तक प्रतीकों, नामों और जिन चीजों की ओर वे संकेत करते हैं, उनके बीच दूरी पर जोर देती है। यह अंतर मास्टर डेटा, रिकॉर्ड मिलान और विलय जैसी आधुनिक समस्याओं में सीधा उपयोगी है। यदि दो स्रोतों में एक जैसा नाम है, तो वे एक ही व्यक्ति नहीं भी हो सकते। यदि दो रिकॉर्ड के पहचानकर्ता अलग हैं, तो वे एक ही व्यक्ति के अलग प्रतिनिधि हो सकते हैं। अच्छा मॉडल इसलिए केवल कुंजी घोषित नहीं करता, वह पहचान की विधि, उसके प्रमाण, दायरे, परिवर्तन और अनिश्चित मिलान की स्थिति भी समझता है। केंट का आग्रह है कि प्रतीक की साफ संरचना को वस्तु की साफ पहचान समझने की भूल ना की जाए। चौथा, विशेषता, संबंध और प्रकार के बीच चुनाव अर्थ को बदल देता है। डेटा मॉडलिंग में किसी तथ्य को विशेषता, संबंध या प्रकार के रूप में दिखाना अक्सर साधारण डिजाइन विकल्प माना जाता है। केंट दिखाते हैं कि यह चुनाव अर्थ लचीलेपन और भविष्य की क्षमता को प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति का विभाग एक विशेषता जैसा दिख सकता है, लेकिन यदि विभाग का अपना इतिहास, प्रबंधक, स्थान और अनेक सदस्य हैं, तो उसे संबंध या स्वतंत्र इकाई की तरह देखना अधिक उचित हो सकता है। इसी तरह किसी वर्गीकरण को स्थिर प्रकार मानने से यह छिप सकता है कि श्रेणियां बदलती हैं, एक वस्तु अनेक श्रेणियों में आ सकती है, या अलग उपयोगकर्ता अलग वर्गीकरण अपनाते हैं। विशेषता और संबंध की सीमा हर जगह एक ही नियम से तय नहीं की जा सकती। निर्णय इस पर निर्भर है कि तथ्य की स्वतंत्र पहचान है या नहीं, क्या उसके बारे में अलग जानकारी रखनी है, क्या वह समय के साथ बदलता है और क्या उसका अर्थ अन्य संदर्भों में पुनः प्रयुक्त होगा। केंट का योगदान किसी एक आधुनिक नोटेशन की वकालत नहीं है, वे उस विचार प्रक्रिया को सामने लाते हैं जो नोटेशन से पहले होनी चाहिए। मॉडलर को यह पूछना चाहिए कि वह किस प्रकार का दावा दर्ज कर रहा है, क्या वह वस्तु का अंतर्निहित गुण है, किसी अन्य वस्तु के साथ संबंध है या सुविधा के लिए लगाया गया वर्ग। यह अनुशासन कठोर संरचना को अर्थहीन होने से रोकता है। अंत में मॉडल के दृष्टिकोण, समय और अंतर्निहित बाधाओं को स्पष्ट करना जरूरी है। केंट के लिए एक ही वास्तविकता के अनेक वैध मॉडल हो सकते हैं। यह सापेक्षता मनमानी नहीं बल्कि उद्देश्य और दृष्टिकोण का परिणाम है। वित्त विभाग, संचालन टीम और ग्राहक सेवा एक ही ग्राहक, उत्पाद या अनुबंध को अलग प्रश्नों के लिए देखते हैं, इसलिए उनका डेटा अलग संरचनाओं और सीमाओं के साथ बन सकता है। कठिनाई तब आती है जब किसी मॉडल को सार्वभौमिक सत्य मानकर दूसरे मॉडल पर आरोपित कर दिया जाता है। पुस्तक मॉडल ऑफ रियलिटी और मॉडल ऑफ डेटा के अंतर पर विचार करती है। पहला किसी क्षेत्र के बारे में हमारी अवधारणा है, जबकि दूसरा उस अवधारणा को किसी सूचना संरचना में व्यक्त करने का माध्यम है। दोनों में छिपी बाधाएं होती है, जैसे कौन सा संबंध अनुमत है, कौन सा मान अनिवार्य है, किस समय पर कोई तथ्य मान्य है या कौन सी श्रेणी परस्पर अलग मानी जाएगी। यदि ये नियम केवल डेवलपर की समझ में है और मॉडल या दस्तावेज में नहीं है, तो डेटा का उपयोग गलत हो सकता है। समय का प्रश्न भी निर्णायक है। नाम, भूमिका, सीमा और संबंध बदलते हैं, इसलिए वर्तमान रिकॉर्ड को स्थायी सत्य समझना जोखिमपूर्ण है। केंट का दृष्टिकोण मॉडलर को केवल संरचना नहीं बल्कि दृष्टिकोण, वैधता अवधि, नियमों और अपवादों को भी स्पष्ट करने के लिए बाध्य करता है। यही स्पष्टता बदलती प्रणालियों में अर्थ की निरंतरता बचाती है। निष्कर्ष में, डेटा एंड रियलिटी उन डेटा आर्किटेक्टों, डेटा मॉडलरों, बिजनेस एनालिस्टों, डेटाबेस प्रशासकों, उत्पाद डिजाइनरों और डेटा एकीकरण पर काम करने वालों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिन्हें अलग स्रोतों में एक जैसे शब्दों के अलग अर्थ मिलने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह उन तकनीकी पाठकों के लिए भी मूल्यवान है जो समझना चाहते हैं कि अच्छी स्कीमा के बावजूद प्रणाली उपयोगकर्ताओं की वास्तविक जरूरतों से क्यों चूक सकती है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ तैयार उत्तरों में नहीं, प्रश्नों की गुणवत्ता में है। पाठक पहचान, नाम, श्रेणी, संबंध, समय और दायरे के बारे में पहले से अधिक सावधानी से सोचने लगता है। इससे आवश्यकताओं की चर्चा बेहतर होती है, छिपी धारणाएं जल्दी सामने आती है और डेटा एकीकरण के दौरान सतही मिलान पर निर्भरता घटती है। समान श्रेणी की कई पुस्तकें किसी विशेष डेटाबेस तकनीक, मॉडलिंग नोटेशन या डिजाइन पद्धति पर केंद्रित रहती है। केंट की पुस्तक उनसे अलग है क्योंकि वह उनसे पहले आने वाले अर्थ संबंधी निर्णयों की जांच करती है। इसकी आयु पुरानी है, लेकिन विषय आज के साझा डेटा प्लेटफॉर्म, विश्लेषण और स्वचालित निर्णय प्रणालियों में उतना ही प्रासंगिक है। तीसरे संस्करण की टिप्पणियां आधुनिक पाठक के लिए संदर्भ जोड़ती है, हालांकि मूल पाठ की दार्शनिक तीक्ष्णता ही इसकी असली ताकत है। जो पाठक चरणबद्ध टेम्पलेट या त्वरित नियम चाहते हैं, उन्हें यह चुनौतीपूर्ण लग सकती है। पर जो डेटा को केवल संग्रह नहीं, दुनिया के बारे में किया गया दावा मानते हैं, उनके लिए यह एक आधारभूत और लंबे समय तक उपयोगी कृति है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं विलियम केंट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।